प्यारे भाइयों और बहनों, जो कुछ कल से मेरे बारे में कहा गया है, मैं उसे सुनकर शर्मसार हो रहा हूं, क्योंकि मन आनम किमी दानम जितना कुछ कहा गया है, मैं उसका आपसे आशीष भी, उसका लाखवां हिस्सा भी डिजर्व नहीं करता। मैं उसका बिल्कुल मुस्तहिक नहीं हूँ। हाँ, मैं यही समझ के ये सब कुछ सुनता रहा हूँ कि ये जितनी महिमा हो रही है, ये हमारे मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की हो रही। इस सिलसिले में एक पारसी शायर ने जो एक अकायद ज्ञान की है वो मुझे याद आ गई है। वो एक दफ़ा एक हमाम में गए, हमाम में उन्हें एक मिट्टी का टुकड़ा मिला जो बड़ा खुशबूदार था। उससे उनका दिलो दिमाग मुअत्तर हो गया। उन्होंने जो देखा तो वो मिट्टी थी, बड़े हैरान हुए और उन्होंने मिट्टी से आलमे हैरत में पूछा कि ये ऐ मिट्टी, तू मुझे ये बता कि तू अंबर है या मश्क, और अंबर या मश्क हमारे फारसी दान जानते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू वाली चीज़ें हैं। तो मिट्टी ने ये हाथ जोड़कर जवाब दिया कि मैं हूँ तो वही मिट्टी, मगर मेरा वास्ता कुछ दिन फूलों से पड़ गया। तो यही बात है, अगर मेरे को, मेरे भाइयों और बहनों को, मेरे बच्चों और बच्चियों को कोई बात इस मिशन की अच्छी लगती है तो उसका श्रेय सारे का सारा हमारे मुर्शिद आज़म हज़ूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को और हमारे हज़ूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज को जाता। मुझे तो ना कोई पहले जानता था ना कोई अब जानता है। आप मुझसे जितने भी बहन भाई यहाँ आए हैं वो सब इन्हीं दो महापुरुषों के नाम में आए। उन्होंने इस गौर कल युग में रूहानियत के सूरज की किरणें चारों सू बखेर दी, दुनिया का दर्रा दर्रा चमक उठा, और यही उनका फैज है कि आज भी रूहानियत का सर चश्मा जारी और सारी। और अब ये जो काम हो रहा है ये उन्हीं का काम हो रहा है और उन्हीं का हुक्म से हो रहा है। यहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो बिल्कुल बेबहरा था, इसका मुस्तिक नहीं था। ये प्रभु की कृपा थी कि मेरा जन्म एक ऐसी अजीम हस्ती के घर में हुआ जो परमात्मा रूप थी, जो जिंदा जावेद खुदा थी, जो चलता फिरता दुनिया पे स्वयं परमात्मा थी। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि जहाँ मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को, मेरे बुजुर्गों को किसी मुर्शिद कामिल या पूर्ण सद्गुरु के चरणों में पहुँचने के लिए बहुत तलाश करनी पड़ती है, बहुत तजस्सुस करना पड़ता है, मेरे लिए ये काम एक सहल ही नहीं था, एक कुदरती अतिया था। क्योंकि मेरी पैदाइश से 4 साल हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज को अंतर में रूप बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन हुआ करते थे। मेरी पैदाइश 1921 में हुई, और वो फरमाते थे कि उनका ख्याल था कि गुरु नानक साहब से वो अंतर में बातें करते हैं, और मैं जब 3 बरस का था तो वो जिस्मानी तौर पर हमारे मुर्शिदे आज़म हुज़ूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में पहुँचे। उन्हें प्रयाग के शहर का बड़ा शौक था, तो जब वो लाहौर से ब्यास गए तो अंतर में तो ये लोग सब जानते हैं क्योंकि हमादां होते हैं, मगर ज़ाहरा तौर पर वो सिर्फ इसलिए गए थे कि चलो ब्यास के दरिया के सैर कराएं। मगर वो फरमाते थे कि जब वो ब्यास के रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ श्री बुआ दास जी मिले, जो उस वक्त वहाँ के स्टेशन मास्टर थे, और उन्होंने रूरत पुनूर से पूछा कि क्या आप जो डेरे में संत रहते हैं उन्हें मिलने के लिए आए हैं? तो इन्होंने हैरत से कहा कि कहाँ, क्या यहाँ कोई संत भी रहते हैं? तो उन्होंने हमारे मुर्शिदे आज़म का पूरा पूरा परिचय दिया। तो ये दरिया के किनारे किनारे चलते हुए डेरा बाबा डायमंड सिंह में पहुँचे, और जब ये मुर्शिदे आज़म के रूबरू हुए तो वो लव एट फर्स्ट साइट का भी क्या मामला था, मोहब्बत तो पहले ही हो चुकी थी, दीदार पहले हो चुका था, अभिसाल भी पहले हो चुका था अंतर में। तो इन्होंने देखा तो वो वही महान हस्ती थी कि जो उन्हें 1917 से अंतर में दर्शन दे रही थी। तो उस मुबारक दिन के तकरीबन 3 साल बाद मेरा जिस्मानी तौर पर जन्म हुआ, और जब मैंने आंखें खोली तो ऐसे माहौल में खोली जो कि रूहानियत से पुर था, रूहानियत से लबरेज था। उसकी हर शुआ में, उसकी हर कण कण में, उसकी पूरी फुदा में रूहानियत बह रही थी, और उसके 2 ही साल बाद हमारे मुर्शिदे आज़म ने मुझ पे करम फरमाया, नजर करम की, क्योंकि मैं तो छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक था, तो मैं अक्सर देखा करता था कि सुबह जब मैं उठता था तो हमारे हजूर पुन्नू, जिनको उस वक्त मैं बाऊजी के नाम से पारा करता था, और मेरी वालदा, मेरी माता, ये भजन में बैठे होते थे, और मैं भी इनके साथ बैठ जाया करता था थोड़ी देर के लिए। तो कुछ मुझे शौक हुआ, कुछ कृपा हुई, उस दिन में एक उमंग उठी, और एक रोज़ जब मैं हजूर पुनूर के चरणों में पहुंचा तो मैंने अर्ज की कि महाराज जी आप मुझे नाम दीजिए। तो महाराज जी तो सब जानने वाले थे, और उन्होंने भी मुझे मिठाई लेके दे दी और टाल दिया कि ये लो बेटा तुम्हें यह नाम मिल गया। मगर उससे मेरी कोई तशफ़ी नहीं हुई, मेरी तसल्ली नहीं हुई। तो उससे चंद दिन बाद फिर जब मैं उनके कदमों में पहुंचा तो मैंने फिर यही बात दोहराई कि महाराज जी आप मुझे नाम दे दीजिए। तो महाराज जी ने फिर वही कहा, अच्छा भाई अभी आपको मिठाई का नाम देते हैं। तो मैंने कहा महाराज जी मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे तो वो नाम चाहिए जो आपने मेरे पिता को दिया। और उसका असर ये था कि महाराज जी ने मुझे बैठा दिया कमरे में, खुद वो आराम कुर्सी थी जिस पर वो रौनक अफरोज थे, मेरे माथे पे उन्होंने अपना अंगूठा रख दिया और अपनी रहमत से मुझे नवाजा। मुझे वो बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर ले आए और पूछने लगे कि अंदर में क्या दिखाई देता है, तो मैं उनको बताता गया कि ये रोशनी आ रही है, और जब मैंने ये कहा कि अंदर में मैं सितारे देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा बाकी फिर मिलेगा। तो ये जब मैं 5 वर्ष का था तब का यह वाकया है, 1926 का। उसके बाद फिर गर्मी भी सदा यही थी, और अक्सर मैं अपने मुर्शिदे आज़म के यहाँ ब्यास में हाजिर होता रहता था। और बचपन से ही, क्योंकि मैं देखता था कि हमारे हजूर पुनूर हर वक्त सेवा में लगे रहते थे, मुझे भी कुछ सेवा का चस्का पड़ गया था। और जब मैं 13 वर्ष का था 1934 में, तो उस वक्त ब्यास में एक बहुत मशहूर अकाली लीडर थे, उनका नाम था रंगीला जी। वो वहाँ आए और उन्होंने जब हजूर के सत्संग सुने तो वो उनके मोहित हो गए, और उन्होंने हजूर से ये दरख्वास्त की कि मुझे नामदान दे दिया जाए। आम तौर पर हजूर 16, 17 या 18 वर्ष से नीचे के बच्चों को नाम नहीं दिया करते थे। मैं उस वक्त सिर्फ 13 साल का था, तो मैंने भी हजूर से अर्ज की कि जब मुझे भी आज नाम दे दिया जाए, क्योंकि वो मंथली सत्संग नहीं था, और मंथली जो इज्तम होता था वहाँ नाम लाम लेने वालों के लिए वो भी नहीं था। और हजूर ने अपनी नजर करम से अपनी रहमत, जो के सर से पांव तक वो तो रहीम थे, वो तो करीम थे, अपनी रहमत से ये मंजूर कर लिया और मुझे नामदान बख्श दिया। तो 1934 में मुझे हमारे मुर्शिदे आज़म हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज ने नामदान की दौलत बख्शी। उसके बाद वो मुझ पर बहुत मेहरबान थे। मैं शैतान भी था, काफ़ी शैतान बच्चा था, और पढ़ने में उनकी दया से, उनकी मेहर से मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। मैं उमून अबुल ही आया करता था, और उनसे कुछ दिली लगन थी। जब जाता था तो काका कह के पुकारा करते थे, मेरे गालों को थपकार देते थे, मेरे सर पे प्यार कर देते थे। और मुझे याद है कि जब वो एक दफ़ा हमारे गांव में सैयद कसरा में गए, तो वहाँ मैं कुछ सेवा का काम कर रहा था, महाराज जी और हमारे हजूर पुनूर और उनके साथ कुछ और सत्संगीत ये थे, वो बाहर लोगों को देखने के लिए चले गए। तो जब मुझे मालूम हुआ कि वो हमारे गांव से बाहर चले गए हैं, तो मैं भी उसी तरफ भागा। तो वो तो जब लंबे रास्ते थे गए थे, उसमें एक डक्की थी, एक पहाड़ी थी बड़ी स्टीप, और कुछ ऐसा जोश जुनून था कि मैंने आउटे का बताओ, मैंने उसी दौड़ में वो जो बड़ी स्टीप पहाड़ी थी उसी पे मैं भाग खड़ा हुआ। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं उसमें कुछ लुढ़का, मगर लुढ़क के जब मैं गिरा तो मेरे सर जो था वो हमारे मुर्शिदे आज़म के पाँव में था। तो हजूर ने बड़ी शफकत से, बड़ी रहमत से मुझे उठा लिया, मुझे अपनी छाती से लगाया और यह फरमाया कि ये मेरा पुराना यार है। तो इसी तरह वो बहुत मेहरबान थे, बहुत शफीक थे। मैंने मैट्रिकुलेशन में 75% मार्क्स लिए थे, और मेरा यह ख्याल था कि मैं या तो डॉक्टरी के लाइन में जाऊंगा या इंजीनियरिंग के लाइन में जाऊंगा, क्योंकि इतने मार्क्स लेकर उस वक्त किसी भी डॉक्टरी या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं दाखिल हो सकता था बड़ी आसानी में, क्योंकि मेरा स्कॉलरशिप भी था। और यही उम्मीद लेके मैं अपने हजूर पुनूर, अपने वालदे बुजुर्गवार हजूर संत कृपाल सिंह जी के हमरा मैं ब्यास गया। मेरे दिमाग में यही था कि या तो इंजीनियर बना जाए या डॉक्टर बना जाए। तो जब हम हजूर के कदमों में पहुंचे तो हजूर को हमारे हजूर पुरनूर ने, यानी संस्कृतपाल सिंह जी महाराज ने मेरे नतीजे के मुतल्लिक बताया तो हजूर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, उचकारा, प्यार दिया, कहने लगे भाई मुझे तुम पे फख्र है। और फौरन ही उन्होंने कह दिया कि काका फारसी बड़ी मीठी जबान है, सारा तसव्वुफ फारसी जबान में, फारसी पढ़नी चाहिए। अब मैं तो दिमाग में मेडिकल और इंजीनियरिंग का ख्याल लेके गया था और बच्चा था, ना समझ था, हो सकता है कि मैं कुछ हमाकत कर देता और कुछ मैं बात करता, मगर हमारे हजूर पुरनूर ने अपने मुंह पे इस तरह से उंगली रखी जो कि मेरे लिए इशारा भी था और हुक्म भी था कि मैं खामोश हो जाऊँ। तो फिर हजूर पुरनूर ने हमारे मुर्शिद आज़म से पूछा कि भी बाकी क्या मजमून लेने चाहिए, तो उन्होंने फरमाया कि भाई तारीख बड़ी अच्छी होती है, तारीख क्योंकि वो उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, हिस्ट्री को कहते हैं। और इस तरह से जो मेरा करियर था जिसे मैं एक डॉक्टर या इंजीनियर के क्राइटेरियन में बनाना चाहता था, उससे मेरा करियर एक आर्ट्स के स्टूडेंट का बन गया। और मुझे मालूम नहीं था कि वो मुझे शायरी की जो नेमत है वो अता करने वाले, ये तो हमादान होते हैं। अगर मैं किसी मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में चला जाता तो मैं शायर नहीं बनता। और उन्हें मालूम था उन्होंने क्या काम लेना है, तो जिस तरह से लाइन होती है वो अपनी एक लाइन से दूसरी लाइन पे बदल जाती है, इसलिए मेरी एजुकेशन की उन्होंने लाइन बदल दी। इसके बाद कॉलेज में मुझे कुछ शायरी का शौक चढ़ाया, कुछ चूँकि हमारे हजूर पुरनूर खुद बहुत अच्छे शायर थे, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैंने शेर कहना शुरू कर दिया। तो ये 1938 की बात है, मैंने अभी शेर कहने शुरू किए थे और उन दिनों में हमारे यहाँ एक ऑल इंडिया मुशायरा हुआ था जिसमें हिंदुस्तान के सारे नामवर शायर थे, हमारे वहाँ उसके स्मृति थे फारसी के जो हमारे और उर्दू के उस्ताद थे सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम, उस वक्त हिंदुस्तान के, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थे, अजीम शायरों में से माने जाते थे। तो जहाँ बाकी हिंदुस्तान के मशाहिरों ने उस मुशायरे में हिस्सा लिया, उसमें हमारे कॉलेज के दो लड़के, एक मैं और एक मुबारक मसूद, हमारी भी नज़में उन्होंने शामिल कर दी। तो उस वक्त जो ब्रॉडकास्ट हुई करती थी, अब की तरह से रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट नहीं होती थी, लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ करती थी। तो उन्हीं दिनों मैंने जैसा अर्ज किया उस मुशायरे में मैंने अपनी ये गज़ल पढ़ी जो कि काफ़ी पसंद की गई, और वो गज़ल हमारे हजूर पुरनूर ने रेडियो पे सुनी। तो उसके चंद दिन बाद 27 जुलाई का फंक्शन था, तो ये क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ता था कॉलेज के बाद, मेरा कमरा जो था आगे का जो कमरा था जिसे आप बैठक कहते हैं वो मेरे पास थी, और बिल्कुल मेरे अपोजिट जो अंतर का कमरा था उसमें हमारे हजूर पुरनूर का कमरा था, तो वो अक्सर बैठे हुए उन दिनों में गुरमुख सदान लिखा करते थे और मैं अपना पढ़ा करता था। तो वो रात को 12 बजे 1 बजे तक इधर आ जाया करते थे, मुझसे सारी बातें पूछा करते थे, भाई क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो यहाँ आ गए। उन दिनों में हमारे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की मैगजीन थी रावी, उसमें मेरी 2-4 गज़लें भी उन दिनों में छप गई थी। तो महाराज जी वहाँ आए और कहने लगे भाई तुम शायरी कर लेते हो। मैंने कहा जी शायरी तो नहीं कर लेता, अभी तक तो मैं तुकबंदी करता हूँ, बाकी ये है कि चूँकि आपका फैजान है और कॉलेज में सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब का करम है, इसलिए मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया है शटर पटर। तो वो फरमाने लगे कि भाई 27 जुलाई आ रही है, इसके लिए कोई नज़्म लिखो। अब जब उन्होंने ये फरमाया तो मेरा सर से पांव तक पसीना छूट गया, कहाँ मैं और कहाँ इतनी अजीम हस्ती के मतलब नज़्म कही जाए। तो मैंने कहा साहब ये मेरे बसात की बात तो है नहीं, मेरे बस से बाहर है। तो वो कहने लगे नहीं तो शुरू तो करो। तो मैंने कहा जी मैं कैसे शुरू करूँ, किस मिसरा तरह पे शुरू करूँ। तो उन्होंने मुझे एक मिसरा तरह दे दिया कि खुदा का नूर सावन में भला मालूम होता, और ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 17 वर्ष की थी। और उनका कर्म था, मैंने तो क्या नज़्म लिखनी थी, क्या पिद्दी का शोरबा, वो नज़्म अच्छी खासी लिखी गई। और जब ब्यास में हमारे मुर्शिदे आज़म का जन्मदिन मनाया गया और मैंने वो नज़्म पढ़ी, तो हुज़ूर आमतौर पर जब लोग नज़में पढ़ते थे उनकी तारीख में तो बिल्कुल खामोश रहते, और वो कई दफ़ा कहते भी थे भाई मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू क्या बनूँ, मैं अपनी तारीफ खुद कैसे सुनूँ। तो ये उनका कर्म समझिए, उनकी मुझे इंस्पिरेशन समझिए कि उसमें से चार शेर उन्होंने दोबारा मुझसे पढ़वाए। और वो गोया बहुत बड़ी दाद थी, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। वो समझिए कि एक मुझे बूस्ट मिले, जैसे आजकल जब ये हमारे आउटर स्पेस में जहाज जाते हैं तो वो अपने बेस से बूस्ट मिलती है, तो वो बूस्ट मुझे हमारे मुर्शिदे आज़म ने दी। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने शेर कहना शुरू कर दिया। और शेर कहने की बात नहीं है, क्योंकि शेर तो वही है जो आमद हो आवुर्द नहीं हो। मैं जो चीख उठा से कब था, और शेर वो शेर जो आवाज़ हो खामोशी की। शेर कहा नहीं जाता, शेर हो जाता है। तो उसके बाद शेर होने शुरू हो गए, और हजूर बहुत तारीफ किया करते थे। जब कभी कोई बात होती थी तो कहते थे भाई काका कुछ लिख के लाए हो, दर्शन कुछ लिख के लाए हो, तो चाहे वो बाबा जयमल सिंह जरा में कोई फंक्शन हो या हमारे मुर्शिदे आज़म के किसी पोते के जो पोते की शादी हो, मैं वहाँ जाता था और वो नज़्में मैंने पढ़नी शुरू कर दी। इधर मैंने कुछ और शेर कहने शुरू कर दिए। तो ये उन्हीं का कर्म था कि मुझे एक डॉक्टर और इंजीनियर के बनने के बजाय उन्होंने एक फारसी का आप समझिए कि स्टूडेंट बना दिया। और क्योंकि उन्होंने बताया था कि भाई फारसी में तसव्वुफ़ का सारा कलाम है, इसलिए मैंने अपनी तालीमी के ज़माने में जितना ये मिस्टिक स्कूल है इसको पढ़ डाला था, और इस पे मैंने एक थीसिस भी लिखा था। तो ये थी उनकी रहमत। अब मैं आपको अपने बचपन की कुछ एक दो बातें ऐसी बताता हूँ जो कि हमाकत की बातें हुआ करती हैं, मगर बात यह है कि जो सदगुरु है ये ब्रिज की लाइट रखता है। वो ये याद है कि मैं जब भी जाता था वहाँ, तो महाराज जी अगर ऊपर आराम भी कर रहे होते थे तो मैं वहाँ सीधा चला जाया करता, क्योंकि मैं था और कुछ दोस्त थे, अगर गर्मी होती थी तो महाराज जी कमरे में जब आराम करते थे तो वहाँ जब पंखा था, उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो हाथ से खींचने का पंखा था, तो हम बरामदे में बैठ के वो पंखा खींचा करते थे। शाम को जब सत्संग होता था तो चूँकि पंखे नहीं थे, वो हाथ वाला पंखा वो मैं भी उसे जला करता था, पंखा किया करता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं गर्मियों की तातीलात थी, गर्मियों की छुट्टियां थी, 3 महीने की कॉलेज में छुट्टियां होती थी, तो मैं जब गया तो मुझे रोक दिया गया उनके दरवाजे पे। तो मैंने चू नहीं की, चरा नहीं की। और उसके बाद मैं जब थोड़ी देर के बाद मैं गया तो फिर भी मैं रोक दिया गया। तो उन दिनों में हमारा बड़ा सत्संग बन रहा था ब्यास में, तो मैंने कहा अच्छा दाता जो तेरी मौज है। तो उसके बाद मैं वहीं रहा, मैं सत्संग तो अटेंड करता था वही सबके पीछे की कतार में बैठ के, और जो बाकी वक्त होता था वहाँ सेवा हुआ करती थी ईंटों की, जोड़ी की, ईंटों को कूट के छोटी छोटी ईंटों के जो हिस्से करने होते थे उसकी तो मैं वो करता रहता था। और जब 3 दिन गुजर गए तो मैंने मेरे दिल में ख्याल आया कि वाह ए खालिक कि मैं तेरी इंतजार में यहाँ बैठा हूँ और आपको अभी तक खबर नहीं हुई। यही मेरा एक शेर है कि ये मेरी रंगीनिये दिल की का ये इम्तहान है कि हम बात नहीं करें और उनको खबर हो जाए। तो वो तो हमारे दान थे, कोई 2 बजे होंगे 2:15 बजे होंगे दिन को कड़कती धूप, क्योंकि छुट्टियां तो होती हैं आप समझते हैं कि जून जुलाई के महीनों में। तो मैं वहाँ डोरी कूट रहा था तो इतने में मैं देखा कि हमारे मुर्शिद आज़म उधर से आए, जो गेट था सत्संगत था वहाँ से सत्संगत की जो बिल्डिंग बन रही थी उससे आते आते वो वहाँ आ गए कि जहाँ मैं रोड़ी कूट रहा था। तो मैंने उनकी कर्मबोसी की, उनके चरणों पे माथा टेका तो कहने लगा काका कब आए हो? मैंने कहा महाराज जी 3 दिन हो गए हैं। कहने लगा मिलने क्यों नहीं आए? तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, आंसू छलक पड़े, क्योंकि उस वक्त मैं खाम था। क्योंकि आंसुओं का कायदा ये है कि जब इंसान खाम होता है, कच्चा होता है तो आंसू आ जाते हैं, मगर जब वो पुख्ता हो जाता है तो दिल पिघल के आंखों तक तो आता है। आदमी की पलकों तक आंसू आते हैं मगर पलकों पर आंसू नहीं आते। तो क्योंकि मैं खाम था, मैं कच्चा था, इसलिए मेरी आंखों से बाहर उमड़ पड़े। तो उन्होंने मुझे दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहने लगे कि क्या बात है? तो फिर मैंने हमाकत की कि मैंने वो किस्सा क्या सुनाया। तो महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि ना चलो, मैं कहता हूँ कोई नहीं तुम्हें रोकेगा मेरे पास आने के बाद। तो मुझे अपनी कोठी पे ले गए और वहाँ जो हमारे भाई इंतजाम किया करते थे उन्हें उन्होंने हुक्म सादर कर दिया कि भाई जिस वक्त जैसे आए थे आने दिया। तो ये तो उनकी मैं शफ़क़त के आपको चंद एक नमूने बता रहा हूँ। अब उसके बाद अपने हुजूर नूर की बात सुन लीजिए। हुजूर बड़े शफीक थे, महाराज जी बड़े शफीक थे, मगर मुझको बड़ी कड़ी नज़र रखते थे। एक तरफ तो ये मामला था कि जब ये रेडियो नया नया निकला, इसकी हिंदुस्तान में आया, तो मैं जो चाहता था जो कहता था मुझे ले देते थे। तो मैंने एक रोज बात की, बात मैंने सीधी नहीं की, मैंने बात इस तरह से की कि आजकल रेडियो पे बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं कम्पिटेंट, उनके आपस में डिस्कशन होते हैं, उनकी बड़ी एजुकेशनल वैल्यू है। तो मैंने इस अंदाज से एक रोज़ जब हुज़ूर पुनूर मेरे कमरे में तशरीफ़ लाए तो मैंने बात की और वो खामोश रहे। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि भाई ये मेरा तीर जो है ये चूक गया। मगर दूसरे दिन शाम को मैंने वहाँ एक हमारी मजलिस इकबाल थी, उस मजलिस की वो मीटिंग थी, तो वहाँ मैं जा रहा था। मैं जीने से नीचे उतर रहा था, शाम को महाराज जीने के ऊपर आ रहे थे तो मुझे जीने में मिले और कहने लगे कि दर्शी जाके ओरिएंटल रेडियो से अपना रेडियो ले आना। मैंने उनसे बोल दिया, ये आलम था, जो मैं चाहता था वो मिल जाता था और मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मगर पढ़ाई के मामले में और भजन के मामले में बड़े था। मैंने जैसा आज किया कि मेरा स्कॉलरिस्टिक करियर बहुत अच्छा था, मैं अमूमन फर्स्ट रहा करता था, मगर अगर कभी चूक हो जाती थी, 4 मजमून या 5 होते थे और मैं 4 में फर्स्ट आ गया और 1 में 3rd, 4th, 5th आ गया कहीं, तो वो मेरी जो हमारे वक्त में आजकल तो रिपोर्ट बुक घर पे नहीं आती हैं, और आती भी हैं तो बच्चे खुद साइन करके भेज देते हैं। हमारे वक्त में हमें खुद अपने पिता के दस्तखत कराने पड़ते थे। तो जब वो रिपोर्ट उनके पास आती थी और अगर कहीं चूक हो जाती तो वो फेंक देते थे, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू साइन इट। और फिर मुझे नाक ज़मीन पर रखना पड़ता था, बड़ी मिन्नत करनी पड़ती थी, समाजत करनी पड़ती थी, ऐरो पैमान करने पड़ते थे कि साहब नींद नकदी रखा, जो होगा जो कमी रहेगी मैं उसे पूरा करूँगा, क्योंकि उनका अपना करियर फर्स्ट रहा था। और इसलिए वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट से नीचे तो वो मानते ही नहीं थे। और इसी तरह से बाकी बच्चे कई बार आते थे इसके बाद भी, तो मैं देखता था कि बाकी बच्चे जो आते थे तो उनका रिजल्ट सिर्फ वो पास हो जाते थे थर्ड डिवीजन में या सेकंड डिवीजन में, तो उन्हें वो शाबाश दे दिया करते थे, और मेरी जरा सी चूक हो जाए तो वो नाराज़ होते थे। तो एक दिन मैंने बड़ी हिम्मत बढ़ करके मैंने कहा कि बाबू जी, आप बाकी बच्चे तो जो आते हैं उन्हें आप अगर उनकी थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन होती है तो उन्हें शाबाश दे देते हैं, मगर मेरे लिए आपने इतना बड़ा क्यों स्टैंडर्ड रखा है? तो वो फरमाने लगे, लुक एट दर्शी, आई जज अदर फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड बट आई जज यू फ्रॉम माई स्टैंडर्ड्स। कि मैं दूसरे बच्चों को तो उनके स्टैंडर्ड से जज करता हूँ मगर तुम्हें मैं अपने स्टैंडर्ड से जज करता हूँ। आप देखिए अब कहाँ आदमी खा के नस्बत खाक रहा बाल में पाक। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से ये तो दौर था ये गुजरता चला गया, कुछ मेरा शायरी की तरफ रुजू हुआ और कुछ इसी तरह से मेरे अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए। काफ़ी अच्छा मेरा स्कॉलिस्ट करियर रहा, मैंने यहाँ आकर नौकरी कर ली दिल्ली में, क्योंकि उस वक्त क्योंकि लड़ाई का ज़माना था, जितने ICS के और इंडियन पुलिस के जितने अंतान थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो मुझे यहाँ आकर सेक्रेटेरियल सर्विस करनी पड़ी। तो मैं यहाँ से मुझे क्योंकि दफ्तर में भी मेरा काम बहुत अच्छा माना जाता था और वो अंग्रेज़ अफसर थे और अंग्रेज़ी पे मुझे काफ़ी अबूर था, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बड़ा था, विच आर कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो उनसे बहुत अच्छा मैं चलता था, तो उन्होंने मुझे एक ख़ास असाइनमेंट दे के बॉम्बे में भेज दिया। ये 1944 के शुरू की बात, और वहाँ क्योंकि वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने थे, इसलिए वहाँ तो आप समझते हैं कि आजकल बड़ी टेम्पटेशन होती हैं, हर तरह की टेम्पटेशन आई, मगर ये हुजूर का हाथ था मेरे सर पे और हुजूर पुनूर उनकी मदद थी कि मैंने किसी को स्कम डाउन नहीं किया, बड़ी ऑनेस्टली मैंने अपना काम किया। तो इससे पहले जब मैंने महाराज जी से याद किया था कि आप दूसरों को तो जब वो थर्ड विन आती है तो उनकी तारीफ़ कर देते हैं और मुझ पर इतनी कड़ी नज़र रखते हैं, तो मैंने कहा कि आपको खुश करना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने वही बात याद रखी और मुझे उन्होंने चिट्ठी लिखी कि बाई डूइंग सो यू हैव प्लीज गॉड इन यू एंड योर फादर हुम यू सेड वन डे इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज। कि ऐसा करने से तुमने तुम्हारे अंतर जो परमात्मा है, जो वाहेगुरु है, उसको खुश किया है और अपने पिता को जिसे तुमने किसी दिन कहा था कि खुश करना बड़ा मुश्किल। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा और ब्यास में हमने एक सावन सदस्य लीग बनाई हुई थी, हम 7 नौजवान लड़के थे और जितना ये सेवा का काम है हम सब किया करते थे अपने अधूरे पुनूर उनकी रहनुमाई में। तो वहाँ इसीलिए हुजूर से भी वास्ता बराह रास्त पड़ जाता था और हुजूर से तो रास्ता था ही। इसी तरह से बाकी ये दोनों जो हस्तियाँ थीं ये मुझ पे नज़र कर्म अपनी रखती थीं, अगर मैं कहीं गिरता था या फिसलता था तो ये बचा लेती थीं, और सरात मुकीम मुस्तकीम पर जो सही रास्ते पर मुझे इन्होंने चलना सिखाया और राइट अंडरस्टैंडिंग दी। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक्या और सुनाना चाहता हूँ, और यह वाक्या है अक्टूबर 1947 का। तो 1947 में हमारे हजूर हमारे मुर्शिद आज़म उन्हें ट्यूमर ऑफ द ब्लैडर हो गया था, तो उस सिलसिले में वो अमृतसर इलाज के लिए गए थे और हमारे हजूर पुन्नूर को डेरे का इंतजाम करने के लिए छोड़ गए थे। वो वहाँ से कुछ खबर जो आई तो अच्छी नहीं आई, तो यहाँ मैंने देखा उन दिनों में पार्टीशन के दिन थे, गाड़ियाँ यहाँ आती नहीं थीं और जब आती थी तो वो रेडियो पे अनाउंस हुआ करती थी। तो मैंने जब ये सुना कि हुजूर की तबीयत बहुत ख़राब है तो मैंने कहा कि अगर किसी तरह से हो सके तो मैं अमृतसर पहुँच जाऊँ। तो सुबह मैंने रेडियो पे सुना कि उस वक्त कोई 8 बजे रेडियो की न्यूज़ थी कि 9 बजे गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से चलेगी। तो मैंने उस वक्त एक कंबल लिया, एक मेरे कज़न थे मेरे ताजी के लड़के, उन्हें मैंने साथ लिया और हम वहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। वहाँ दरवाज़ा बंद हो चुका था क्योंकि बड़ी भीड़ हुआ करती थी, मगर चूँकि मैं काफ़ी एथलेटिक्स में हिस्सा लेता रहा था, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता रहा था, बहुत लंबा जंगला था उसके ऊपर मैं चढ़ के मैं फांद गया। और जब मैं पहुँचा तो गाड़ी में तिल धरने को जगह नहीं थी, तो उस वक्त जैसा कि कहा जाता है कि नौजवानी का ज़माना था जिसमें खून था और खून में गर्मी थी, इसलिए मैं उसकी छत पे चढ़ बैठा और दिल्ली से लेकर अमृतसर तक मैंने गाड़ी की छत पे ट्रैवल किया। और जब मैं वहाँ उतरा तो मैं सीधा हुजूर की ज़ियारत के लिए गया, तो उस वक्त हुजूर की हालत कुछ बेहतर थी, उससे कुछ दिन पहले उन्हें गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दिया गया था गलती से, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। तो उस वक्त हमारे अधूरे पुंडून में, ये अक्टूबर 1947 की बात है, ज़रा गौर से सुनिए, तो उस वक्त हमारे अधूरे पुंडून ने मुझे ये बताया कि मुझे हजूर ने यह नामदान का और सत्संग का काम सौंप दिया है, उन्होंने मुझे कह दिया है कि यह काम उनके बाद मैंने करना है, मैंने बहुत उनकी मिन्नत समाजत की है कि आप यहाँ रहें और जो नाच आप नचाएंगे मैं नाचूंगा, ये उन्हीं के अल्फाज हैं हमारे अधूरे पुनूर के। मगर उन्होंने मुझे ये असाइनमेंट दे दी है तो दृष्टि इस सिलसिले में मुझे बहुत तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। मैंने कहा साहब मैं क्या मदद कर सकता हूँ, क्या पद्दी का शोरबा, तो आप जितनी मदद चाहेंगे ले लेंगे। तो ये जो फैसला था ये मुझे अक्टूबर 1947 में ही हमारे अधूरे पुनूर ने बता दिया। 2 अक्टूबर 1948 को हुजूर वासले हक हो गए और ये जो नया काम था मिनिस्ट्री का ये हमारे हुजूरे पुनूर ने छूटा और हुजूरे पुनूर की मिनिस्ट्री चलती रही। उसमें भी कुछ फैमिली की जिम्मेदारियाँ उन्होंने मुझे सौंपी, कुछ जो लिटरेरी काम था उसे शुरू से उन्होंने मुझे उस पर लगा दिया था। तो बहुत सी ये जो लिटरेरी काम था, लिखने पढ़ने का काम था, करस्पॉन्डेंसी और जो काम थे वो जो दे दिया करते थे मैं कर दिया करता था, तो ये उन्हीं का कर्म था जो कि उन्होंने मुझे अपने कदमों से लगाए रखा। और जब 1974 में वर्ल्ड फेलोशिप वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनिटी और मैन हुई, तो उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि भाई देखो ये काम बहुत बड़ा है, ये काम करना है तो इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दिया करो। तो मेरी आंखों से आंसू उछल पड़े, मैंने कहा जी मैं तो ना तो इसके काबिल हूँ। वो कहने लगा नहीं मैं अभी यहीं हूँ, मगर मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, तैयारी तो करनी चाहिए ना। इतने में कोई और वहाँ आ गए, महाराज खामोश हो गए। तो उसके बाद काफ़ी उन्होंने मुझ पर दया की, जब मैं जाता था उससे पहले भी और बाद में भी बटन बैठा दिया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जितना भी उनका काम था रूहानियत का, हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान से बाहर उसकी थोड़ी सी जो तफसील थी वो बताते रहे मुझे। और 19 अगस्त 1976 को रात का वक्त था, मैं उनके चरण दबा रहा था, उन्हें ज़्यादा बड़ी तकलीफ जिस्मानी तौर पर, क्योंकि इन्हें तो जिस्मानी तौर पर तकलीफ़ होती है, अंतर में तो ये मालिक होते हैं दो जहान के। तो वो बिल्कुल शांत हो गए, उन्होंने अपनी जो रब्बी आंखें थी उससे मेरी आँखों में देखा और मुझ पर रहमत कर दी। मैं इसका मुस्तहिक नहीं था जैसा कि मैंने कहा, मगर उन्होंने मुझे ये अपना रूहानियत का काम था। उसके बाद हमारे बड़े हजूर हमारे मुर्शिदे आज़म ये अक्सर कहा करते थे कि जब कुम्हार कोई बर्तन बनाता है तो बाय तो लकड़ी से उसे ठोकर देता है मगर अंतर अपना हाथ रख लेता है। तो यही हाल इस मिशन का था, हम एक पाक से दूसरी पाक में, एक मैदान से दूसरे मैदान में वो चलते रहे। मगर चूँकि रब्बी हुक्म है इसलिए ये तो अटल है, और मेरे पास भी हजूर पुनूर के प्रभु से वासल होने के कोई दो महीने बाद हमारे भाई मलकम किंडर्स और उनकी धर्मपत्नी केट आई तो मुझसे पूछने लगे भाई ये क्या होगा। तो मैंने यही कहा कि दिस इज गॉड वर्क, नोबडी कैन डू इट एंड नोबडी कैन स्टॉप इट, ये प्रभु का काम है, ना कोई इसे कर सकता है और ना कोई इसे बंदी कर सकता है। तो वही उन्हीं की दया है जो ये काम चल रहा है। आज जो हम यहाँ हजारों की तादाद में इन्हीं दो महापुरुषों की याद में यहाँ बैठे हैं, जो उन्हीं के फैजान तक उन्हीं के कर्म का यह नतीजा है। और यही जो बात हजूर महाराज जी कहते थे, जो हमारे मुर्शिद आजम कहते थे कि ज्यों ज्यों वक्त गुजरेगा रूहानियत का काम फले और फूलेगा, और ये उन्हीं की रहमत से फल और फूल रहा। तो ये मैंने सिर्फ चंद एक गलतियाँ बताई हैं, बातें तो बहुत है करने की, उसके लिए तो एक दफ्तर दरकार है कि ये कैसे काम चल रहा है, क्यों काम चल रहा है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने नामदान दिया, कुछ मेरे कुछ नसीब भाई ऐसे हैं जिन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने नामदान दिया। मैं उन दोनों कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन सबको मैं अपना सर झुकाता हूँ, क्योंकि जिन्होंने ऐसे महापुरुषों की आंखों से पी है उनकी आंखों में जब देखता हूँ मैं तो मुझे वही नूर दिखाई देता है, उन्हीं का जलवा दिखाई देता है। तो मैं जब उन्हें झुक के आदाब करता हूँ, जब मैं झुकता हूँ उनके सामने तो मुझे जो अपने गुरु का जलवा दिखाई देता है मैं तो उसके सामने अपना सर झुकाता हूँ। मुझे कई बार ये कहा जाता है कि आप मुर्शिद आजम के जो नाम ले रहे हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं, मैं ख्याल तो हर एक रखने की कोशिश करता हूँ मगर वो सब मेरे सर के ताज हैं जो हमारे मुर्शिद आजम के नाम लेवा हैं, जो हजूर पुरनूर के नाम लेवा हैं, और जो बाकी हमारे बहन भाई हैं उन्हें भी उन्हीं के नाम से और उन्हीं के हुक्म से नामदान दिया जाता है। तो ये जो सारी फैमिली है, सारा कुंबा है, ये हमारे मुर्शिद आजम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का है और हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज का है। मैं भी आपके कुंबे का एक फर्ज हूँ। बात यह है कि अगर ऐसी हस्तियाँ चाहें तो वह एक पत्थर से काम ले सकती है, और अगर वो कोई काम हमसे ले तो हमें तो उसका शुक्राना अदा करना चाहिए कि वो काम ले रही हैं। तो इसलिए हम सबको इन दो महापुरुषों को शुक्राना अदा करना है और हम सबको उनके चरणों में यही प्रार्थना करनी है कि वो हमें इस बात की तौफीक दें कि हम जो मार्ग उन्होंने हमें बताया है हम उस पर चल सकें। ऐसा जब भी कोई दिन मनाया जाता है तो उसका सबसे बड़ा मनाने का तरीका यही होता है कि जो तालीम इन महापुरुषों ने हमें दी है हम उस पर अमल करें। उन्होंने हमें यही बताया है कि सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा कि हजूर का हुक्म था कि एक ऐसी कामन धरती बनाई जाए जिस पर तमाम मजहब वाले आके इकट्ठे हो सके और जिसे प्रैक्टिकल फॉर्म अमली सूरत हमारे हजूर पुनूर ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन एंड वर्ल्ड काउंसिल ऑफ यूनिटी ऑफ मैन बनाकर पूरी की। अब भी वही काम चल रहा है और यही एक यूनिक स्टेज है हिंदुस्तान में और इसके बाद के जहाँ तमाम राय पर लोग आके इकट्ठे होते। उन्होंने हमें इंसानियत की तालीम दी है। हमारे हजूर पुनूर फरमाया करते थे कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिकम ए मैन बट वंस वी बिकम मैन देन इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू फाइंड गॉड. तो इंसान का बनना मुश्किल है और अगर हम इंसान बन जाएं तो प्रभु का पाना मुश्किल नहीं. तो उन्होंने हमें यही तालीम दी कि हम अपना एक एथिकल बेस बनाएं, क्योंकि ये एथिकल बेस है, यही एक जीना है रूहानियत का. और उसके लिए उन्होंने दुनिया में पहली दफ़ा साइंटिफिक बेसिस पे हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डायरी दी. तो हमें यही चाहिए कि जैसा उन्होंने हुक्म दिया है हम रोज़ डायरी रखें, हमारी ज़बान में इतनी मिठास हो कि अगर कोई जख्म खुर्दा दुनिया का हमारे पास आ जाए तो हमारे अल्फाज जो कि हमारे दिल की गहराइयों से निकलें, जो कि हम दर्दी से भरपूर हों, उनसे उन पर मरहम लगे. हमें हर वक्त सेल्फलेस सर्विस के लिए, निष्काम सेवा के लिए तैयार होना चाहिए. हमारी ज़िंदगी शुद्ध होनी चाहिए, हमारा आहार हमारा व्यवहार जो है वो शुद्ध होना चाहिए. हमें नॉन वायलेंस के मुताबिक अपना जीवन बनाना चाहिए, अहिंसा का जीवन हमारा होना चाहिए. जीवन में जो पाकीदगी और पवित्रता है वो एक बहुत बड़ी पूंजी है ज़िंदगी में कामयाबी की, क्योंकि हमारे हजूर पुनूर फरमाया करते थे कि चैस्टिटी इज़ लाइफ एंड हजूर पुनूर फरमाया करते थे कि चैस्टिटी इज़ लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज़ डेथ. इसके अलावा हम में नम्रता होनी चाहिए, हम में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो खुद ही है जिस पे हमें काबू पाना है. और हम खुद ही तो उस वक्त तक काबू नहीं पा सकते जब तक किसी हम ऐसे महापुरुष के चरणों में नहीं पहुँचते कि जिसने खुद ही पे काबू पा लिया है और जो जिसने ये मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ हल कर ली. तो ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हम ऐसे महापुरुषों के नाम लेवाएँ. अब हम सबको यही चाहिए और यही है सबसे बड़ा तरीका आज का दिन मनाने का कि जो उन्होंने हमें तालीम दी है उस पर हम अपनी ज़िंदगी को ढालें, ताकि हमारी ये दुनिया भी समझ जाए और हमारी आखिरत भी समझ जाए. हमारे हुज़ूर पुन्नू ने हमेशा ये बताया करते थे कि ये इंसान का जो जीवन है, इंसान की जो ज़िंदगी है, ये सर्वश्रेष्ठ है. इसे वो क्राउन ऑफ क्रिएशन कहते थे, इसे हमारे मुसलमान भाई अशरफुल मखलूकात कहते हैं, इसी को नन्नरायनी दे कहा गया है, सरदार जूनी कहा गया है, क्योंकि यही वो जूनी है जिसमें हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है. और इसीलिए इसे फरिश्तों पर भी तरजीह दे गई है. यह हमारे जितने भी सहायक हैं उनमें आया है, ग्रंथों में आया है कि जब इंसान को पैदा किया गया तो फरिश्तों को भी यह हुक्म सादर हुआ कि इंसान को सजदा हाथ करें. क्योंकि अगर फरिश्तों को भी अगर हमेशा के लिए अमर होना मंजूर हो, हमेशा की मुक्ति चाहिए, वो चाहें कि वो प्रभु में समा जाएँ, तो उन्हें भी इंसान के जिस्म में आना पड़ता है. और इंसान की क्या खूबी है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तायद के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ. कि जो फरिश्ते थे वो तो पहले ही मौजूद थे, इंसान को बनाया गया तो इसलिए बनाया गया जैसे फैलो फीलिंग हो दूसरों के लिए, इसके दिल में हमदर्दी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो. तो ये दोनों हस्तियाँ जो थी ये इसके मुजस्सम थी, ये लव परसोनिफाइड थे. और इन्होंने हमें प्रेम का रास्ता सिखाया है कि साज कहूँ सुन लेओ सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो. वो खुद प्रभु थे और उन्होंने हमें यही बताया कि प्रभु प्रेम है और हमारी आत्मा चूँकि परमात्मा की अंश है इसलिए वो भी प्रेम है और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का है. तो ये है उनकी तालीम. इसलिए हमें यही चाहिए कि हम अपनी जो ज़िंदगी है उसे उनके जो हुक्म हैं उनके लिहाज से ढालें. वो क्राइस्ट का ये कॉल अक्सर दोहराया करते थे कि यू शुड लव मी कीप माई कमांडमेंट्स. तो हम जो कहते हैं कि हम उनके नाम लेवा, तो आइए आज हम ये तहजिया कर लें और उनके चरणों में ये प्रार्थना करें कि अगर हम पहले से इस रास्ते पर चल रहे हैं तो और तेज़ गाम हो जाए और तेज़ी से चलना शुरू कर दें. और अगर आज तक हमने इस रास्ते पर चलना शुरू नहीं किया तो हम आज से रास्ते पर चलना शुरू कर दें, क्योंकि ये तो जन्मदिन का मामला है. आज का जो मामला है ये जन्मदिन का है और जो जन्मदिन होता है इसके लिए देखिए कि एक वेस्ट में ये कस्टम है कि हम एक केक बनाते हैं उसमें जितने साल होते हैं उतनी मोमबत्तियाँ लगाते हैं और फिर उसे खुद हम बुझा देते हैं। मगर ये तो जो जन्मदिन मनाना है या केक काटना है, ये तो उसे ही वाजिब हो सकता है कि जिसने अपनी सारी मंजिल तय कर ली है। हमारा एक बहुत बड़ा सफ़र है, हमारी मंजिल जो है बहुत दूर है, क्योंकि हमारे हुज़ूर पुन्नू और हमारे मुर्शिद आज़म यही हमें बताया करते थे कि हमारी मंजिल है खुद शनासी और खुदा शनासी। खुदा शनासी की और खुदा में जाके लीन होने की जो है वो आखिरी हमारी मंजिल है। वही जो कम्युनियन विद गॉड है, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन, अपने आप को जानना और प्रभु को पहचानना जो है, वही हम सबसे बड़ी हमारी जो है, हमारा रास्ता वही है। तो हमें उस रास्ते को पाना है, हमें वहाँ पहुँचना है, और इसलिए हमारा सफ़र जो है ये बड़ा लंबा है और हमारी ज़िंदगी का हमें कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अब अगर हमने डेस्टिनेशन में पहुँचना है तो उसके लिए दो फैक्टर्स हैं, एक टाइम और एक स्पेस का, एक तो वक्त का और दूसरा मकान का। अब देखिए कि हमारा सफ़र बहुत लंबा है और हमारी जो उम्र है ये बिल्कुल फेथलेस। मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ, क्या मालूम मैं अगला लफ्ज़ आपसे कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ। हम रोज़ देखते हैं कि कितने भाई हमसे बातें करते करते अपनी आंखें बंद कर देते हैं और उनकी जो रूह होती है उनके जिस्म से प्रवास कर जाती है। तो इसीलिए हमारे जो ये दोनों मुर्शिद आदम और हुज़ूर पुन्नू जो दोनों हस्तियाँ हुई हैं, उन्होंने हमें यही बताया है कि भाई जितना वक्त हमारी ज़िंदगी का गुजर चुका है वो तो गुजर चुका है, बाकी जो वक्त है उसे पूरी तरह से हम, ये जो हमारा असली मकसद है ज़िंदगी का, अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, उसमें लगाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएं और वहाँ खुशी खुशी है, सरसारी सरसारी है, मस्ती मस्ती है, ना फिर आना है ना जाना है, ना 84 लाख जिया जून का झंझट है, और वहाँ जाके हम प्रभु में लीन हो जाएं। हमारे सूफी भाई दो मंजिले रूहानियत के बताते हैं, एक फनाफिल श्याख होने की, जब हम जिस्मानियत से ऊपर आए, जीते जी मरने की विद्या सीखें, क्योंकि सब महापुरुषों ने हमें यही कहा है कि लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। और इसी तरह से हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि मौत कबल आता मौत, और दादू पहले मर रहो पाछे मरे हर कोई। और इस तरह से गुरबाणी में भी यही आया है, हम जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आएँ, हम सितारे चाँद और सूर्य से गुजर कर अपने गुरु के जो दिव्य स्वरूप है, जो नूरानी स्वरूप है, उसके दर्शन करें और धीरे धीरे अपने गुरु में हम लीन हो जाएं, और फिर गुरु अपनी छत्र छाया में हमें अपने निजगर सत्खंड में पहुँचा दे, और फिर सतनाम हमें वहाँ से ले जाकर अनामी देश में पहुँचा दे, जा जा के हम हमारी आत्मा परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है, या कतरा समंदर में मिलकर समंदर हो जाता है, या किरण सूर्य में मिलकर सूर्य हो जाती है, वो है हमारी मंजिल। और आज आओ हम सब यही तहिया करें और यही प्रार्थना करें इन दो महापुरुषों के चरणों में, और इनसे पहले जितने भी बली अला आए हैं, जितने भी पैगंबर आए हैं, उन सब के चरणों में और परमात्मा के चरणों में, कि वो हमें तौफीक दें कि हम रूहानियत के रास्ते पर बड़ी तेज़ी से चलें, ताकि हम अपनी मंजिल मकसूद में पहुंच जाएं, और इसी से हमारी जो दुनिया भी समझ जाएगी और हमारी आकबत भी समझ जाएगी। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना।